ధ్యాయే నిత్యం మహేశం రజత గిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్వలాంగం పరశుమృగవరా వీతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణైర్ వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్రపరాశరం చ వ్యాసం సుఖం గౌడపదం మహంతం గోవిందయోగీంద్రమథాస్య శిష్యం శ్రీశంకరాచార్యమథాస్య పద్మపాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తంతోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్పురం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధ జ్ఞాన దేహాయ త్రివేది దివ్య చక్షుసే శ్రేయ ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్య విరచిత్ శివానంద లహరి इस शिव भक्ति से ओतप्रोत स्तोत्र के आधार पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन चल रहा है. शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, उनके भावों को इन श्लोकों के माध्यम से हम परिचित होंगे. अभ्यास के लिए आठवां श्लोक. యథా బుద్ధి సుక్తౌ రజతమితి కాచాస్మని మణిర్ జలే పేష్టే క్షీరం భవతి మృగతృష్ణా సుశలిలం తథా దేవ భ్రాంత్వా భజతి భవదన్యం జడజనో మహాదేవేశం త్వం మనసి చ నమత్వా పశుపతే గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర విపినే విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడమతి సమర్పేకం చేతస్ సరసిజమమానాథ భవతే సుఖేనావస్థాతుం జనైహ న జానాతి కిమహో నరత్వం దేవత్వం నగవన మృగత్వం మసకత పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదా త్వత్పాదాబ్జం స్మరణ పరమానంద లహరి విహారాశక్తం చేత్ హృదయమిహ కిం తేన బపుషా వటుర్వాగేహివ యతిరపి జటివ తదితరో నరో వా యః కశ్చిత్ భవతు భవ కిం తేన భవతి యదీయం హృత్ పద్మం యది భవదధీనం పశుపతే త్వదీయస్త్వం శంభో భవసి భవభారం చ వహసి గుహాయాం గేవా
बहिरपि बने वाद्य शिखरे जले वा वन्नौवा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी यथा बुद्धिसूक्तौ रजतमिति काचास्मनिमणि जले पेष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णा सुसलिलम् तथा देवभ्रान्त्वा भजति भवदन्यं जडजनो महादेवेश त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते यथा बुद्धि सुक्तो।
आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जड़ जनो हे शिव हे परमात्मा हे पशुपते, बहुत से व्यक्ति पैदा तो मनुष्य के रूप में हुए हैं, देखने में तो लगता है कि ये चलते फिरते हैं इसलिए चैतन्य ही हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जड़ पदार्थों के चिंतन करते करते उनकी बुद्धि भी जड़ हो चुकी है। इसीलिए चैतन्य के बारे में वो सोचते ही नहीं, अपने को भी वह जड़ ही मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भूतों का जो परस्पर संयोग है उस संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति होती है। चार भूतों का परस्पर संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए जिसको तुम चेतना कह रहे हो यह भी जड़ भूतों का ही कार्य है। ये सिद्धांत चार्वाकियों का है। वे लोग उदाहरण देते हैं, कि अन्न को जड़ मानेंगे कि चैतन्य मानेंगे, फल को जड़ मानेंगे कि चैतन्य मानेंगे। सामान्यतया तो सब व्यवहार में उनको जड़ ही तो मानते हैं ना, अन्न को जड़ ही मानते हैं। आप सब्जी को, मूली को, गाजर को, गोभी को, टमाटर को जड़ मानोगे कि चैतन्य मानोगे? अब यदि कोई चैतन्य मानता तो चक्कू लेकर काटता क्या है? निश्चिंत होकर चक्कू से काटता है, उस समय उसके मन में किसी को काट रहा हूं, किसी को मार रहा हूं, ये भावना होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि सभी की ये मान्यता है कि ये संवेदना रहित हैं, इसलिए जड़ हैं, ये मान्यता है। इसी तरह जो भात हम खाते हैं, चावल उसका उपादान कारण मूल, चावल को हम जड़ मानते हैं कि चैतन्य मानते हैं? सामान्यतया हम चावल को, भात को जड़ ही मानेंगे, अन्न को जड़ ही मानते हैं। गेहूं को यदि चैतन्य मानते तो चक्की में पीसने जाते क्या? गेहूं को यदि हम जड़ चैतन्य मानते तो चक्की में पीसने तो नहीं जाते। यहां तक कि जब गेहूं पीसने की तैयारी करते हैं तो उसमें कहीं गुण आदि जीव होंगे तो हम उनको अलग करते हैं। क्यों? यदि गेहूं पीसते समय ये भी उसमें चले गए, निकले नहीं, हटाया नहीं हमने, तो बेचारे ये जीव सब मरे जाएंगे। तो उसी गेहूं में रहने वाले इन कीड़ों को, घून को, अन्य कीड़ों को तो हम चैतन्य मानकर हटाते हैं, लेकिन वो गेहूं के जो दाने हैं उनको तो हम चैतन्य नहीं मानते हैं ना, जड़े ही मानते हैं। इसलिए हम संकोच और निसंकोच होकर हम चक्की में उसको पीस लेते हैं। इसी तरह चावल को जड़े मानते हैं, इसलिए हम उसको राइस कुकर में डाल देते हैं। चैतन्य मानते तो क्या हमारी हिम्मत होती, साहस होती राइस कुकर में डालकर पकाने की? सामान्यतया यही। लेकिन वो लोग कहते हैं ये जड़ होने पर भी चावल सब्जी इत्यादि ये सब अन्न जड़ होने पर भी इनको यदि 5-7 दिन किसी डब्बे में बंद करके रख दो तो इसमें चेतना यानी जीव पैदा होते हैं कि नहीं? हाँ? कहां से पैदा हुए वो जीव बोलो? जड़ अन्न से न पैदा हुए? तो जड़ से चैतन्य पैदा हो गया, यही तो उदाहरण है। तो चार्वाक कहते हैं कि ये जो जितनी भी चेतना तुम कह रहे हो यह जड़ से पैदा हुआ है, कोई परमात्मा से पैदा हुआ नहीं है। तुम लोग मानते हो खाली परमात्मा परमात्मा, कहीं परमात्मा से पैदा हुआ हमने कुछ भी नहीं देखा है। परमात्मा से आत्मा पैदा हुआ हमने नहीं देखा है, चेतना पैदा हुआ वो हमने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है, न तुमने देखा न हमने देखा है। क्या देखा है? प्रत्यक्ष देखा है कि जड़ अन्नों से है चेतना जीव पैदा हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको तुम चेतना चेतना कह रहे हो वो जड़ का कार्य है। ये तो चार्वाक का सिद्धांत है। वो लोग बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। अन्न को सड़ने की बात तो सभी लोग अनुभव करते ही हैं। उन लोगों का एक प्रसिद्ध फॉर्मूला है, भैंस का दही और भैंस का ही गोबर। हम लोग न गोबर को चैतन्य मानेंगे न दही को चैतन्य मानेंगे। हालांकि कुछ लोग दही नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि यदि दही खाएंगे तो जीव हिंसा होगी, ये मान्यता है ना, इसीलिए दही नहीं खाते हैं। हमारे जैन बंधु लोग यही तो है, उन लोगों की मान्यता है कि दही नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो दही? कि उसमें बहुत से जीव हैं, दिख नहीं रहे हैं लेकिन छोटे से ये सूक्ष्म वीक्ष यंत्र के द्वारा देखेंगे तो उन जीव प्रत्यक्ष दिखते हैं। स्थूल चर्म चक्षु से प्रत्यक्ष न दिखे तो भी यंत्र से देखेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव विद्यमान है, इसलिए उन लोगों ने दही खाना छोड़ दिया। लेकिन गोबर भी हमारी मान्यता अनुसार जड़ है, दही भी हमारी मान्यता के अनुसार जड़ ही है। दोनों को सम मात्रा में मिश्रण करके किसी जमीन में गाड़ दो, दोनों को डाल दो, मिला दो और एक हफ्ते के बाद देख लो तो बिच्छू पैदा होते हैं। बिच्छी है, जहरीले बिच्छे। अब ये तो चार्वाकियों ने प्रयोग किया होगा, ऐसे तो नहीं कहा होगा। और तुम लोग करना चाहो तो प्रयोग कर लो भाई, हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ के जड़ में डालना, ये भी शर्त रखा है उन्होंने। उसके जड़ में कहीं गड्ढे में डाल दो, मिट्टी और पत्थर हुआ जहां वहां डाल दो, एक हफ्ते के बाद बिच्छू पैदा होते हैं। और स्वाभाविक ही है, अरे खाली गोबर जहां रखा है वहीं गोबर से कीड़े पैदा होते हैं, जहां दही रखो तो वहीं से कीड़े पैदा होते हैं, ये बात अलग है। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि जड़ जड़ से चेतना की उत्पत्ति होती है, ये मान्यता कुछ लोग की है, उनको कहते हैं जड़ मति। या जिसकी मति माने बुद्धि का विषय केवल अध्यात्म और अधिदेव न होकर केवल अधिभूत मात्र जिसके बुद्धि का विषय हो, जड़ पदार्थ ही जिसके बुद्धि का विषय हो, उसके अलावा वो चेतना सत्ता को वो चिंतन ही नहीं करता है, रात दिन जड़ वस्तु का ही चिंतन करता है, उसको क्या कहेंगे? जड़मति। तो हम लोग जो है जरा समझदार हैं, लक्ष्मी की बहुत चिंतन करते हैं, करते हैं ना, तो इसलिए हमने लक्ष्मी को जड़ न मानकर चैतन्य मान लिया। बोलो, लक्ष्मी को हम जड़ मानते हैं कि चैतन्य मानते हैं? पैसे को जड़ मानते हैं, है ना, वो क्वाइन होते हैं कि नहीं आजकल, उसको हम जड़ मानते हैं कि चैतन्य मानते हैं? पैसे को तो जड़ मानते हैं, नोट को भी जड़ मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी को हम क्या मानते हैं? तो हम बड़े होशियार हैं, जड़ की कामना करते हैं चैतन्य से, और रात दिन जड़ की चिंतन करते हैं। तो कभी कभी कोई ये ना कहे तू जड़ वस्तु का चिंतन करता है, तो फट से कह देते हैं नहीं, कहां जड़ का, हम तो लक्ष्मी की चिंतन करते हैं, हम चैतन्य, लक्ष्मी चैतन्य है इसलिए हम लक्ष्मी की चिंतन करते हैं, तो फट से अध्यात्मवादी बन जाते हैं वहां। हाँ, तो ये सब अधिभूतवादी, जड़मती, जड़ वस्तु का चिंतन ध्यान करते करते जिसका मति, जिसकी मति भी जड़ हो गई, ऐसे को जड़मति ऐसा संबोधन किया है। ऐसे जड़ जन संसार में बहुत है, उन लोगों को संसार में भ्रांति बहुत होती है, स्वाभाविक ही है, हम लोगों को भी भ्रांति होती है। हम लोगों को भ्रांति कैसे होती है? शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं, यथा बुद्धि सुक्तौ, ये भ्रांति का लक्षण है, यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति, किदृश बुद्धि, सुक्तौ रजतम इति बुद्धि, जो रात दिन चांदी की चिंतन करेगा, चांदी के ही चिंतन करता हुआ घूमता रहेगा रात दिन, तो वह यदि कदाचित समुद्रों के किनारे में, समुद्र के किनारे में घूमने जाएगा, तो उसको समुद्र के किनारे में बहुत चांदी चांदी दिखेगा। समझे कि नहीं? जो रात दिन चांदी का चिंतन करने वाला होगा, उसको समुद्र के किनारे में क्या दिखेगा? चांदी दिखेगी। सुक्तौ, सीपी, चांदी के समुद्र के किनारे होते हैं ना, शिपला, क्या बोलते हैं आप लोग? सीपी। हाँ, गुजराती में भी वही बोलते हो, शिपला। हाँ, वो शिपलों में वो व्यक्ति को चांदी दिखता है ना। सिपला यदि उल्टा पड़ा हो तो नहीं दिखेगा, सीधा पड़ा हो और धूप लगा हो तो कहेगा कि अरे वाह क्या चांदी है इधर, तो हम जिसको सोच रहे थे वो तो यहां, तो जिधर देखो उधर ही उधर है, यहां कोई चांदी लेने वाला है ही नहीं, चलो इसी को उठा लो, भर लो बोरी में। ये क्या है चांदी, माने सिप में चांदी की बुद्धि होना, इसको सही बुद्धि कहेंगे कि गलत बुद्धि कहेंगे? जो निश्चय गलत फल देने वाला होगा उसको क्या कहेंगे? भ्रांति। जो निश्चय फल गलत देगा उसको कहते हैं भ्रांति, और जो निश्चय फल सही देता है उसको भ्रांति नहीं कहेंगे। और हालांकि भ्रांति भी दो प्रकार के माने हैं, आप लोगों ने कभी पंचदशी पढ़ी हो, सुना हो, पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने दो प्रकार के भ्रम बताया है। भ्रम माने भ्रांति, संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम। संवादि ब्रह्म का लक्षण उन्होंने बताया है तो भ्रांति, भ्रांति होने पर भी प्रयोजन सिद्ध करने वाला होगा तो वो भ्रांति को संवादि भ्रांति कहते हैं, और दूसरा भ्रांति होने के कारण ही प्रयोजन सिद्ध न करने वाला होगा उसको विसंवादी भ्रांति कहते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार सगुणो ब्रह्म उपासना, ध्यान देना, सगुण ब्रह्म उपासना ये भी भ्रांति है, समझे कि नहीं। वेदांत दर्शन के अनुसार सगुणो ब्रह्म उपासना ये भी भ्रांति है, प्रतिमा में विष्णु की बुद्धि ये भी भ्रांति है, ये ब्रह्म ज्ञान है। सामने प्रत्यक्ष दिखता हुआ प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करना ये सर्वथा भ्रांति है। काला सा ये गोल मटोल शालिग्राम का जो पत्थर है उसमें साक्षात चतुर्भुज नारायण बुद्धि करना ये सर्वथा भ्रांति है, ये प्रमा ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है, भ्रांति है ये। भ्रांति है तो फिर शास्त्र ने उस वो उपासना करने के लिए क्यों कहा, इस प्रकार के प्रतिको उपासना करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि सारे शास्त्रों में उपनिषदों में उपासना के प्रसंग में आप लोग सुन रहे हो ना, सुबह के प्रवचन में आजकल खूब झगड़ा चल रहा है तत्त्वमसि महावाक्य को लेकर और मनोब्रह्मेत्युपासीतः इस वाक्य को लेकर खूब झगड़ा चल रहा है। तो श्रुति उपासना की बात क्यों करती, भ्रांति है तो वेदांत ने उत्तर दिया क्योंकि भ्रांति दो प्रकार के हैं, एक संवादी भ्रम दूसरा विसंवादी भ्रम। प्रतिमा आदियों में मूर्ति आदि में भगवत बुद्धि करना है ये भ्रांति, लेकिन ये भ्रांति कैसा है, संवादी भ्रांति है, ये प्रयोजन को सिद्ध करने वाला भ्रम है। और दूसरा है विसंवादी भ्रम, जैसे किसी को रस्सी चाहिए और उसको सर्प में रस्सी बुद्धि करता है तो रस्सी का प्रयोजन उससे पूरा नहीं होगा, हालांकि तुलसीदास जी को हो गया, पता नहीं क्यों हो गया है? तो तुलसीदास जी का प्रयोग सिद्ध किया कि नहीं, सर्प में रस्सी की बुद्धि करके, भ्रांति है कि नहीं वो, हालांकि वो भ्रांति होने पर भी तुलसीदास जी का प्रयोजन पूरा हुआ। चलो यहां तो हो गया, और इधर किसी को सर्प की आवश्यकता थी, सपेरे को, और दिन भर सपेरा सर्प खोज रहा था कहीं सपेरा सर्प मिले पकड़ लूं और नाग पंचमी के दिन गांव गांव घर घर में ले जाऊं और लोग दक्षिणा देंगे, कमाई होगी, नाग पंचमी आने वाली है करके वो सर्प खोज रहा था, दिन भर खोजा कहीं मिला नहीं, शाम के समय में एक रस्से का टुकड़ा मिल गया, और उसने क्या निश्चय किया, ये सर्प है ना, और गया उसको पकड़ के टोकरी में रख लिया उसी समय, क्योंकि उस समय तो प्रखर प्रकाश था नहीं, मंदा अंधकार था। उसने बड़ी युक्ति से सावधानी से चिमटे से कैसे पकड़ के टोकरी में डाली, रात भर प्रसन्न हो गया, एक सर्प आज मिल गया, कल नागपंचमी का दिन है, सुबह सुबह जाऊंगा एक एक घरों में दिखाऊंगा, माताएं बड़े श्रद्धालु होती हैं तो माताएं उनका दर्शन करेंगे, पैसा चढ़ाएंगे, तो दिन भर में हजार दो हजार की कमाई तो हो ही जाएगी है। बड़ा निश्चय, बड़ा खुश होकर रात भर सोया, और दूसरे दिन सुबह जब उसने नहा धो ली और बड़ा प्रसन्नता से वो डब्बा जो सर्प जिसमें बंद करके रखा था उसको लिया और निकला, कहां, नाग का दर्शन कराने के लिए, नागपंचमी के दिन आते हैं कि नहीं आप लोगों के, आते हैं, आया तो पहले घर गया, माताजी आज नागपंचमी है, नाग का दर्शन करो, माता जी आज नाग पंचमी है, नाग का दर्शन करो, करता हुआ चिल्लाने लगा। बेचारे माता जी श्रद्धालु थी, आ आज नाग लेके आ गया सपेरा, नाग का दर्शन अच्छा हुआ, घर में दर्शन मिल गया। बस बाहर दरवाजा खोल के बाहर निकली, गए बेटा दर्शन कराओ नाग का। उसने जैसे टोकरी का ढक्कन खोला तो क्या था उसके अंदर, है रस्सी। अब उसको क्या प्रयोजन पूरा होगा, दिन भर पैसा कमाई होगी। पहली बार उसको वहां से बहरंग वापस जाना पड़ा कि नहीं बोलो, किसके चलते, भ्रांति के चलते प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है ना। लेकिन तुलसीदास जी का भ्रांति के चलते प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं है, प्रयोजन सिद्ध हुआ। इसीलिए एक होता है संवादी भ्रम, दूसरा होता है विसंवादी भ्रम। इस संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम का परिभाषा यह है, इसका फर्क क्या है तो बोल दिया। एक भ्रम होने पर भी प्रयोजन पूरा करने में समर्थ है, दूसरा भ्रम होने के कारण ही प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है। विद्यारण्य मुनि जी ने एक उदाहरण दिए तो वो सबसे परफेक्ट बचता है, है? पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने एक उदाहरण दिया है, वो परफेक्ट बैठता है। वो इसी के लिए दिया है, उपासना के लिए। हाँ, दो आदमी थे, कहते हैं दोनों को हीरे की आवश्यकता थी, समझे नहीं। दोनों हीरा खोज रहे थे, कहीं हीरा मिल जाए तो मालोमाल बन जाए हम। तो कहते हैं कि कहीं एक जगह वास्तव में असली हीरा रखा था और दूसरी जगह दीपक जल रहा था, रात्रि का समय था। तो एक जगह दीपक जल रहा था, दूसरी जगह हीरा रखा हुआ था, दोनों को भ्रांति हुई, समझे कि नहीं। दोनों को क्या भ्रांति हुई, जहां हीरा था उसको भी हीरे की बुद्धि हुई और जहां दीपक जल रहा था उसको भी हीरे की बुद्धि हुई। तो दीपक में भी हीरे की बुद्धि और हीरे में भी हीरे की बुद्धि, क्योंकि वो जो हीरा बुद्धि हुआ है उसको कोई प्रमाण से सिद्ध करके तो हुआ नहीं है, दूर था वो, दूर होने के चलते दोनों सादृश्य थे। दीपक जैसा था हीरा वैसे चमक रहा था, हीरा जैसे चमक रहा था दीपक वैसे जल रहा था। तो दोनों में दोनों की हीरा बुद्धि हुई। दोनों ने कहा कि हम दो आदमी हैं और दो हीरे हैं, है? एक एक ले लेते हैं बॉस। तो एक व्यक्ति दीपक में हीरा बुद्धि करके दीपक को लेने गया, माने हीरे को लेने गया, दूसरा हीरे में ही हीरा बुद्धि की, हीरे में हीरा बुद्धि उसने जो की प्रमाण जन्य नहीं है। यदि प्रमाण जन्य होता तो दूसरों को भ्रांति न होता, समझे कि नहीं। और दोनों में से दोनों विचार कर रहे हैं तो कौन सा लेगा, ये लेगा कि ये लेगा। यदि प्रमाज्ञान हुआ होता तो दोनों में ये च्वाइस न होता, तो ये लेगा का कि ये लेगा। एक ने कहा कि दो हैं, दो दोनों ले लेते, एक एक ले लेते हैं, क्या ये लेना और क्या वो लेना, दोनों हीरा हैं। देखो हीरे में भी हीरा बुद्धि दोनों को हो रहा है और दीपक में भी हीरा बुद्धि दोनों को हो रहा है, ध्यान देना। दोनों में दो चीज में हीरा बुद्धि हो रहा है, तो एक एक इसको मैं ले लेता हूं, इसको तू ले ले, बोले ठीक है। या तू ये लेगा, मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। हम दो हैं, दो हीरा है, एक एक ले लेते, दोनों गए लेने। हीरे को हीरा बुद्धि करके जो गया लेने, उसको वास्तव में भ्रांति होने पर भी हीरा मिल गया। देखो बाद में जब उसको मिला, बाहर में बाहर प्रकाश में लेके आ गया और दिन में जाकर जौहरी को दिखाया तो क्या निकला, है? उसको अभी भी निश्चय नहीं कि हीरा कैसा है क्या है। तो जौहरी के पास दोनों गए, है? हमारे पास हीरा है, तो एक को तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, जब वो नजदीक पहुंचा तो नीचे तेल है और ज्योति जल रही है, ये तो अरे ये तो हीरा नहीं है, ये तो बत्ती है। और उसको जब नजदीक गया उठाया तो अरे बत्ती नहीं है, ये तो हीरा है। तो ब्रह्म से एक को ब्रह्म होने पर भी हीरा मिल गया, क्योंकि हीरे में ही हीरा बुद्धि हुई, इसलिए ब्रह्म होने पर भी उसको हीरा मिल गया, उसको कहते संवादि ब्रह्म। दूसरे को दीपक में हीरा बुद्धि हुई तो ब्रह्म होने के कारण ही, दीपक में हीरा बुद्धि होने के कारण उसको हीरा नहीं मिला। तो एक का प्रयोजन सिद्ध हुआ, भ्रांति से भी प्रयोजन सिद्ध हुआ, दूसरे का भ्रांति से प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। दीपक में हीरा बुद्धि, ये विषमवादी भ्रम का दृष्टांत है। हीरे में हीरा बुद्धि संवादी भ्रम का दृष्टांत है। इसी तरह जितने भी सगुण ब्रह्म की उपासना की बात आती है, उपासना भ्रांति ही है, प्रमा ज्ञान नहीं है। उपासना प्रतीक में शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, मूर्ति में नारायण बुद्धि, ये प्रमा ज्ञान तो नहीं है। प्रमा ज्ञान समझ रहे हो, प्रमाण जनित जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रमा ज्ञान। प्रमाण जनित जो प्रमा, उस प्रमा के द्वारा जो वस्तु का निश्चय होता है उसको प्रमा ज्ञान बोलते हैं। अब प्रमाण से यदि देखने जाओगे, शालिग्राम कभी भी नारायण नहीं हो सकता है, बात समझे कि नहीं। प्रमाण से यदि परीक्षण करने जाओगे शालिग्राम को, वो प्रमाण से क्या सिद्ध होगा, पत्थर ही सिद्ध होगा। प्रमाण से यदि सिद्ध करने जाओ प्रयोगशाला में, यदि प्रयोग करके ये नारायण है कि पत्थर है, प्रमाण से प्रयोग करने जाओगे तो मूर्ति में पत्थर ही सिद्ध होगा, नारायण प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होगा। प्रमाण से नारायण सिद्ध नहीं होगा, तब क्या होगा, भ्रांति। जो नारायण नहीं है उसमें नारायण बुद्धि होना भ्रांति है कि नहीं। लेकिन प्रस्तर आदि में नारायण बुद्धि होने पर, यह भ्रांति होने पर भी उसकी उपासना का फल क्या हुआ, नारायण भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यह उपासना संवादी भ्रम है। और अन्यत्र तुम यदि नारायण बुद्धि करोगे हैं, तो फिर वो उससे तुम प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। जो शास्त्र, इसीलिए शास्त्र प्रमाणित आलंबन में नारायण बुद्धि करोगे तो वह संवादी ब्रह्म होगा, उससे प्रयोजन सिद्ध होगा। और जो शास्त्र ने नहीं कहा है उन वस्तुओं में नारायण बुद्धि करोगे तो वह विसंवादी ब्रह्म होने के कारण प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। समझे कि नहीं। अब सोने का जो मूर्ति बनाए भगवान नारायण की, तुम उस मूर्ति को बनाकर घर में रखकर नारायण बुद्धि करके पूजा करोगे तो वह संवादी ब्रह्म होने पर भी तुमको नारायण भाव का भाव की प्राप्ति होगी, चित्त शुद्ध होगा और भगवत भाव की प्राप्ति तुम्हें अनुभूति होगी। लेकिन उसी सोने का तुम एक चेन बनाकर, लॉकेट बनाकर गले में लगाओगे, लगा रखे होगे नहीं है? और उस गले में जो लटका हुआ है उसमें नारायण बुद्धि करोगे तो क्या तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो चूड़ी है, सोने की बांगड़ी बोलते हो ना, हाथ में पहन रखा है और तुम कहोगे कि नारायण बुद्धि कर लो, क्या तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी? क्योंकि शास्त्र ने हाथ में पहनी हुई चूड़ी में भगवान नारायण की बुद्धि करके पूजा करो ये कहा है, है? नहीं है, शास्त्र ने नहीं कहा, इसलिए तुम भले ही पूजा करो बंगड़ी को नारायण मानते हुए, है? तुमको भगवान नारायण भाव की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? वह विषमवादी ब्रह्म है।
और इधर वास्तव में सोने की नारायण की प्रतिमा बनाकर यदि तुम स्थापना करके आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पंचोपचार षोडशोपचार बत्तीसोपचार पूजा करोगे तो निश्चित है कि तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी। है दोनों सोने है? दोनों में भावना करनी है, एक में शास्त्र प्रमाण के अनुरूप भावना करनी है और दूसरे में शास्त्र ने नहीं कहा फिर भी भावना करनी है। तब दूसरा शास्त्र के द्वारा न कहे होने के कारण यदि तुम भावना करोगे तो उससे तुम्हारे भावना के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी, और पहले में शास्त्र ने कहा है उसी अनुसार जो तुम भावना करोगे तो तुम्हारा के भावना के अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए भ्रम दो प्रकार के हो गए, एक संवादी भ्रम दूसरा विसंवादी भ्रम। ये बात हम क्यों उठा रहे हैं? यहां शंकराचार्य जी, लोग जड़ जना कितने भ्रांति ब्रह्म में हैं और क्या क्या करते हैं भ्रांति के चलते ब्रह्म के चलते, ये बताने जा रहे हैं। यथा बुद्धि ही सुक्तौ रजतम, एक भ्रांति का लक्षण ये हो गया कि सुक्तौ रजतम, रजत बुद्धि, सीपी में रजत की जाने चांदी की बुद्धि होना। दूसरा उदाहरण, कांचास्मनी माने शीशा, कांच बोलते हो ना, संस्कृत शब्द है कांच, शीशा। अस्मनी माने पत्थर, क्योंकि शीशा भी प्रस्तर है, पार्थिव है शीशा, इसलिए कांचास्मनी कांच के टुकड़ों में मणि बुद्धि हो गई। किसी को कांच का टुकड़े में मणि बुद्धि हो गई, हाँ, और किसी को मणि में कांच बुद्धि हो जाती है, ये क्या है? भ्रांति। मणि में कांच बुद्धि होना और कांच में मणि बुद्धि होना दोनों भ्रांति हैं। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना, न जानने का फल कभी कभी सुख होता है, न जानने का बल फल कभी कभी सुख होता है, और कभी कभी जानने का फल बड़ा भारी दुख होता है, होता है कि नहीं? नहीं जानोगे तो सुख है और जानोगे तो दुख है, और कभी कभी नहीं जानोगे तो दुख है और जानोगे तो सुख है, ये विपरीत है, ये दोनों भ्रांति है। न जानने से सुख होगा और जानने पे दुख होगा, और कहीं कहीं जानने पर दुख होगा न जानने पर सुख होगा। इस सुख दुख का कोई ठिकाना नहीं है, वो जानने से सुख होता है कि न जानने से सुख होता है, जानने से दुख होता है कि न जानने से दुख होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे कोई व्यक्ति को रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, तब वह उसको दुख होगा कि नहीं, डरेगा कि नहीं, भयभीत होगा कि नहीं? वो यदि डर गया भयभीत हुआ तो उसका कारण क्या हुआ? न जानना। ये सिद्ध हुआ कि नहीं बोलो? रस्सी के स्वरूप को न जानना उसके लिए भय का कारण बन गया, दुख का कारण बन गया है। फिर से आगे उसने देख लिया, भ्रांति हो गई, सर्प है, तुरंत उस पीछे मुड़ गया और दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते उसको नीचे गिर गया किसी गड्ढे में और टांग टूट गई। बोलो अब सुख होगा या दुख होगा? है? और वो जो दुख है किस कारण से हुआ है? न जानने से। किसको न जानने से? रस्सी को न जानने से। और दूसरा, कोई व्यक्ति को कांच के टुकड़े में हीरे की बुद्धि हुई, अब उसने उस हीरे अब समझकर उस कांच के टुकड़े को घर में लाकर तिजोरी में रख ली और मन ही मन प्रसन्न हो गया कि भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ कर दिया। महात्मा लोग कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। ये महात्माओं की भाषा है ये सब, ये भगवान का कोई भरोसा नहीं है। देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है, है? कोई भरोसा नहीं। तो उस व्यक्ति ने क्या निश्चय किया, इतना बड़ा कांच का टुकड़ा था, बड़ा चमकीला था, अब उसको कांच में हीरे की बुद्धि हुई तो यह भ्रांति हुई कि नहीं उसको, और उसको उठाया लाया, प्रसन्न हो गया, वाह इतना बड़ा हीरा कितना कैरेट का होगा, ओहो इसका मूल्य बाजार में बेचूंगा, तो क्या भगवान प्रसन्न हो गए आज तो, बड़े खुशी से लाया और तिजोरी में रखा और बार बार सबसे कहता रहा भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है भाई, अरे हमको बढ़िया हीरा मिल गया है, अब हमारे पास कोई दरिद्र फटके नहीं आ सकता है, गरीबी नहीं रह सकती, दरिद्री एक दिन बेचूंगा करोड़ों रुपया मिलेगा, करोड़ों रुपया का हीरा मेरे पास है, मुझे लगता है दुनिया में किसी के पास नहीं, अब तो मैं माल माल हो गया, अब क्या प्रसन्न है, भगवान को धन्यवाद दे रहा है, सबको प्रसन्न है, खुश है, है? घर में जाकर श्रीमती का आज खिचड़ी और कड़ी नहीं पकाना, बोले क्यों, अरे आज तो भगवान ने इतना दिया है कि आज खुशी का दिन है, बढ़िया लापसी का लापसी पकाओ, मूंग की दाल का हलवा बनाओ, बादाम काजू डालना उसमें, खूब हलवा पकाओ, आज तो खुशी का दिन है, प्रसन्नता के दिन है, क्या खुश हो गया वो, किसके चलते, अज्ञान के चलते खुश हुआ कि नहीं। अब उसने विचार किया कि एक दिन तो इसको बेचना ही पड़ेगा, रख रखने से क्या फायदा है, है? तो गया जब जौहरी का है बेचने के लिए लेकर गया, कहा मेरे पास एक हीरा है, कितनी कीमत का है, कितना पैसा दोगे तुम, बोले दिखाओ, पहले हम देखेंगे तब पैसे की बात करेंगे भाई, बिना देखे नहीं करेंगे, दिखाओ, तो उसने दिखा दिया, ले ये हीरा है। उस जौहरी ने कह दिया कि अरे हीरा नहीं, इसका एक पैसा भी नहीं देंगे, जाओ लेके जाओ, तुम फोकड़ में दोगे तो भी हम नहीं रखेंगे, ये हीरा किसने कह दिया तुमको, ये तो कांच का टुकड़ा है, बोलो उसको ये प्रमा ज्ञान हुई कि नहीं, ये कांच का टुकड़ा है, ये ज्ञान प्रमाण से सिद्ध हुआ कि नहीं, इसको प्रमा ज्ञान बोलते हैं, प्रमाण से सिद्ध हुआ। अब ये ज्ञान होने पर उसको दुख हुआ कि नहीं, अरे ये तो कांच का टुकड़ा निकला, क्या करें भाई, मेरा भाग्य ही ऐसा, दुखी हुआ कि नहीं, बोलो, हैं? ज्ञान से दुखी हुआ, वो ज्ञान से सुखी हुआ कौन, रस्सी में सर्प मानने वाला जब प्रकाश आ गया तो ये तो रस्सी है, तो अब प्रसन्न हो गया कि नहीं, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं कैसा मूर्ख हूं, ये तो रस्सी निकली, पहले अज्ञान से दुखी हुआ था, ज्ञान से सुखी हुआ, और यहां अज्ञान से सुखी हुआ था, ज्ञान से दुखी हुआ, ये सुख दुख का कोई भरोसा नहीं है वो, हाँ। तो यहां शंकराचार्य जी इसी प्रकार के भ्रांति से लोग किस तरह भ्रमित हैं पहला उसका प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति, यथा कांचास्मनि मणि इति, मणि बुद्धि इति, इसी तरह यथा जले पेष्टे क्षीरम बुद्धि इति, है ये शब्द आप लोग समझ पाए, जले पेष्टे क्षीरम, जल में, जलल में आटा घोलकर पतला बनाकर रखो, मैदा अरारोट कुछ डाल के घोल दो और पतला, तो देखने में कैसे लगेगा, क्षीर दूध लगेगा कि नहीं, यथा पेस्टे क्षीर, पेस्ट माने पीठा, पीठो, पीठ शब्द बोलते हैं वो आटे को, ये संस्कृत भाषा है, पिष्ट पिष्ट, गुजराती में तुम लोग लोट कहो छो, अपने सुके वाय पिष्ट, पीसकर जो तैयार हुआ है उसको पिष्ट, तो पिष्टक द्वारा जो बना उसको पैष्ट, पैष्ट हो गया। पिष्ट द्वारा जो बनेगा वो क्या होगा? पैष्ट होगा। हाँ, तो उस पैष्ट क्षीर पानी में वो पिष्ट डालोगे तो जो सफेद पानी बनेगा वो क्या होगा? पैष्ट होगा। वो पैष्ट में क्षीर बुद्धि हो गई। तुम लोगों ने सुना है कि नहीं पुराण की कई कथाएं हैं, अश्वत्थामा का है, उपमन्यु का भी है। अश्वत्थामा का भी वही प्रसंग है। एक बार अश्वत्थामा बेचारे द्रोणाचार्य तो गरीब ही थे, हैं? द्रोणाचार्य तो गरीब थे, अब गरीब होने के कारण उनकी पत्नी भी गरीब रही होगी। पति यदि गरीब होगा पत्नी अमर होती है कि नहीं, अमीर होती है कि नहीं? यहां तो होते हैं वो, हाँ हो जाते। पत्नी धनवान होगी पति बेचारा गरीब हो सकता है। अरे मायके का संपत्ति लाई होगी तो पत्नी क्या कहती है पता है? पति को क्या बोलती है? ये मेरा संपत्ति है, तेरा थोड़ी है, ये सारा संपत्ति मेरा, मेरा संपत्ति खाकर तुम बचा हुआ है, ये सारी संपत्ति किसकी? मेरी है। तो क्या हुआ? पत्नी धनवान हो गई, पति बेचारा गरीब का गरीब ही रह गया। हाँ, तो ऐसा कृपी के पास ऐसा नहीं था, है ना? बेचारा कृपाचार्य के पास क्या था और क्या देते दहेज में द्रोणाचार्य को, है? तो द्रोणाचार्य और कृपी, उनका पुत्र अश्वत्थामा, घर में तो कुछ था नहीं बेचारा। एक बार वो मामा के यहां चले गए अश्वत्थामा, तो वहां बढ़िया गाय का दूध है उनको पीने को मिला, तो क्या आनंद आया, पहली बार जीवन में मुख में उनको गाय का दूध मिला। तो पूछा कि ये क्या है? ये गाय का दूध है बेटा, खूब पियो, बड़ा गुणकारी है, बड़ा फायदा करता है। तो दो चार दिन मामा के यहां बैठा तो वो गाय का दूध रोज पीता था, बड़ा स्वादिष्ट था। उसके बाद घर आ गए, अब अपनी मां से अश्वत्थामा कहने लगे कि मां मुझे दूध पिला, मां मुझे दूध चाहिए। बार बार दूध पर वह हट करने लग गए अश्वत्थामा। मां ने कहा कि ये बेचारा वहां दूध पी के आया है और यह दूध मांग रहा है, अपने पास दूध तो है ही नहीं। बड़ा होशियारी कर लिया उसको। हम लोग कभी कभी बच्चों को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिह्वा जो है चाहे बच्चे का हो चाहे बड़े का हो बराबर काम करता है, करता है कि नहीं? जुवा तो चाहे बच्चे का हो चाहे बूढ़े का हो, जुवा बराबर काम करता है। उन्होंने आटा घोल दिया पानी में और थोड़ा घोल घाल के ले बेटा गिलास में तैयार कर दिया, ले बेटा दूध पी ले। अब अश्वत्थामा ने जब दूध के नाम पर वो पिया तो जुवा ने उसको रिजेक्ट कर दी। मां ने दूध कहा लेकिन अश्वत्थामा के जुवा ने तो कहा नहीं ना, कहा? जुवा भी यदि मान लेता मां का कहना, जैसे मां ने कहा वैसे जुवा भी कह देता तो अश्वत्थामा को कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। जुवा ने रिजेक्ट कर दिया, बोले थू थू कर दिया, ये तो नहीं है दूध, मुझे दूध दो। बड़ा हट करने लगा तो कृपी ने कहा जब द्रोणाचार्य जी आए, अरे सुनो जी, ये जो लड़का है हमारा बेटा है वो बहुत हट कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है। क्यों? बोले दूध के लिए हट कर रहा है, वो और कुछ खा ही नहीं रहा है, मुझे वही चाहिए बोलता है। अब क्या करें भाई? बोले क्या करें, हमारे पास गाय खरीद के लाने का कोई क्षमता नहीं है, संपत्ति पैसा नहीं है, और आजकल तो श्राद्ध पक्ष भी नहीं है, जजमानी भी नहीं चल रही है, कोई जजमानी नहीं चल रही है। नवरात्रि होती तो कोई अनुष्ठान आदि कर लेते, चंडी का पाठ वो भी नहीं है। श्राद्ध पक्ष होता तो किसी के यहां श्राद्ध तर्पण कराने चले जाते, वो भी नहीं है। क्या करे, जजमानी भी नहीं चल रही है। फिर कृपी ने कहा कि देखो ऐसा करो, तुम्हारा जो एक मित्र है ना, पढ़ते समय गुरुकुल का साथी, कौन था? द्रुपद। हा, वो आजकल राजा बना है कह रहे हो ना तुम। पहले जो तुम्हारे गुरुकुल का साथी है वो अभी राजा बना है, तुमने ही तो कहा है। तो उसके यहां चले जाओ मित्रता के नाते, उसके राजा है, उसके यहां तो बहुत गाय है, बहुत संपत्ति है, तो थोड़ा सा संपत्ति जाने दो, संपत्ति छोड़ दो, एक गाय तो ले आओ, मांग लो, एक गाय मांग के ले आओ, तो उसी के दूध पिला देंगे, संतुष्ट हो जाएगा। तो बेचारे अश्वत्थामा चले गए, है ना? मानना ही पड़ता है, तुम लोग मानते हो कि नहीं? पत्नी का कहा है, सारे उदाहरण है, वो पत्नी का कहा मानते हैं, सब मानते हैं। देखो सुदामा माने कि नहीं? किसने भेजा कृष्ण के पास सुदामा को? है, जाओ। सुदामा जाना नहीं चाहते थे, जाओ कहा और मानना ही पड़ा। होम मिनिस्टर का कहा कौन नहीं मानेगा बेचारा। अब यहां कृपी ने भी अश्वत्थामा को कहा जाओ, जाओ। द्रोणाचार्य, सॉरी, द्रोणाचार्य को कहा जाओ जाओ, बेचारे वो चले गए। और बेचारा वो फिर राजा बनने के बाद उसका अहंकार तो साथ में आसन को छू चुका था। जब वो पढ़ता था परशुराम जी के यहां, तब एक अक्षर उसको नहीं आता था, थोड़ा बहुत जो है यही द्रोणाचार्य जी उसको सिखाते थे, अतिरिक्त पढ़ा देते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, पास मार्क लाता था, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होता था वो, डिक्टेंशन की तो बात ही छोड़ दो। और द्रोणाचार्य जी डिक्टेंशन लाते थे ना, केवल पास की बात नहीं है, फर्स्ट डिवीजन नहीं, डिक्टेंशन मेरिट हो जाते थे वो। और ये बड़े मुश्किल से वो भी द्रोणाचार्य जी के कृपा से पास मार्क लाता था और कहता था मित्र तुम मुझे सिखाना, मुझे पढ़ाना, मैं युवराज हूं, तो बाद में मैं राजा बनूंगा, तो तुम्हारे ये सारे चीज का मैं, हमारे साथ रहेंगे, मैं मदद करूंगा तुमको, राजा बनूंगा, तो मित्र तो है। इस संस्कार के चलते चले गए द्रोणाचार्य जी है? लेकिन उसने जवाब दे दिया, कौन मित्र, किस बात का मित्र, जवाब दे दिया। ये गाय देने को तैयार नहीं हुआ द्रोणाचार्य जी को, तो बड़ा गुस्सा आ गया बेचारे द्रोणाचार्य जी, कामात क्रोधो अभी जाए थे, पढ़ा है कि नहीं किताब में? गाय की कामना से गए थे कौन? द्रोणाचार्य जी। किसके यहां? राजा द्रुपद के यहां है। लेकिन जब वो कामना में प्रतिबंधित हो गया, रुकावट आ गया, उसने दिया नहीं, तो क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न, बस क्या था, तब दुश्मनी शुरू हो गई। तब गाय तो नहीं मिली, अब क्या करें? बड़े समझा समझा के उसको किसी तरह खिचड़ी खिचड़ी से अश्वत्थामा को बड़ा किया, भाई दूध तो है ही नहीं, संपत्ति तो है ही नहीं। इसी तरह उपमन्यु का भी ये बात है, भगवान शिव के शिष्य है ना भक्त उपमन्यु की कथा आपने सुना, 5 साल के बालक हैं, उनको भी कहानी वही है, उसी तरह मामा के यहां गए तो उनको दूध पीने को मिला, घर में आए तो उन्होंने मां से कहा तो बेटा गाय है ही नहीं हमारे पास, तुमको दूध कैसे पिलाए? बोले उनके यहां इतना गाय है, हमारे यहां एक गाय भी क्यों नहीं है? बोले बेटा अब क्या करें, भगवान ने उनको इतना गाय दिया, हमको नहीं दिया, भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे, उनको दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे? बेटा हमने कोई तपस्या नहीं की होगी, हमारा कोई पुण्य नहीं रहा होगा, इसलिए भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई होगी। कौन से भगवान ने दिया है? बोले बेटा शिव में यदि प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ दे सकते हैं। तब उपमन्यु ने तपस्या शुरू की। तो शुरू की थी एक गाय के दूध की कामना से, और होते होते ऐसा हो गया कि शिव जी के अलावा और कुछ नहीं। ऐसे शिव भक्त हुए अनन्य के इतिहास में, उसका उल्लेख हमने परसों किया ही था। तो ये क्या है, ये सारा प्रसंग किस वाक्य से चल पड़ा? जले पेस्टे क्षीरम, ये क्या है? भ्रांति, ये भी भ्रांति का लक्षण है। भवति मृग तृष्णा सुसलिलम, दूसरा मृग मरीचिका, मरुभूमि में दिखने वाला जो जल, तो मरुभूमि में जल की जो भ्रांति है उसको मृग तृष्णा कहते हैं, मृग की तृष्णा। वो क्या है? वो भी एक भ्रांति है। तथा देव भ्रांता भ्रांत्या, इसी प्रकार से जड़ धिया, बहुत से जड़ बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं वह भ्रांति से, जो वास्तव में महादेव नहीं, जो वास्तव में परमात्मा नहीं, उन सब में भी थोड़ा सा प्रयोजन सिद्ध होता हुआ देखा कि उसी को परमात्मा समझकर उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की ही सेवा करने लग जाते हैं सभी लोग भ्रांति से। दरगाह पूजने लग जाते हैं किसे, बोलो, किसी से थोड़ा सा उनका प्रयोजन पूरा कर दिया है। एक सज्जन आके कह रहे थे हमको, एक महिला का शरीर में बहुत दर्द होता था, उसकी पत्नी का, औषधि किया, दवाई किया, यूं किया त्यों किया, किसी से कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा कि इसमें कोई मृतात्मा किसी का घुस गया है, इसके कारण से इसको तकलीफ हो रहा है। तुम ऐसा करो कि फलाना दरगाह है वहां, वहां उस दरगाह में जाओ तो बस वो सब खत्म हो जाएगा। देखो मेरा भी ऐसे ही था, मैं एक बार दरगाह में किसी ने कहा, मैं गया वहां जाकर फूल चढ़ाया, गुलाब के फूल, मैं अब ठीक हूं। तो रोज शिवजी के जल चढ़ा था तो उससे तो कमर ठीक नहीं हुआ, लेकिन दरगाह में जाकर एक गुलाब का फूल चढ़ाया तो कमर ठीक हो गया, मेरा दर्द सब खत्म हो गया। तब से मैं नियमित दरगाह जाता हूं। अब क्या हुआ बोलो? एक छोटा सा लौकिक फल मिल गया, इतनी मात्र से वो दरगाह ही प्रधानता हो गई, उसी को साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानने लग गया। अब वो भ्रांत है कि नहीं बोलो? शिव जी को छोड़ दिया जल चढ़ाना, उनको क्या कहेंगे? कब्र पूजने वाला तो क्या है, जड़मती, जड़ दिया और क्या। अब ये बात अलग चीज है, दरगाह भी जो परमात्मा है सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, तो दरगाह में भी है कि नहीं बोलो? सर्वव्यापक होने के कारण दरगाह में है। अब कोई सुनेगा तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएगा, है मुसलमान, आप लोग तो मुसलमान नहीं हो, आप लोगों को तो बुरा नहीं लगेगा, तो मुसलमान कदाचित तो सुन लेगा है, तो वो लोग भी कम नहीं है, हमारी धज्जी उड़ा देते हैं वो लोग भी है। ये सब बूथ परस्त, हम लोगों को क्या बोलते हैं, बूथ परस्त, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक हैं। अब वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते तो मूर्ति पूजकों की वो धज्जी उड़ाते थे, लेकिन वो कब्र पूजा करते हैं, है ना? कब्र पूछते हैं कि नहीं बोलो? दरगाह में क्या करते हैं? कब्र पूछते हैं। अब मान लो वही तो मूर्ति है, उसमें हमने नाक कान आंख बना दी, हाथ पांव बना दिया, उन्होंने नहीं बनाया, मिट्टी तो दोनों में बराबर है कि नहीं है? मिट्टी तो वही है कि नहीं? पत्थर तो वही है, मिट्टी तो वही है, उसी में जरा आंख कान नाक बना दिया हमने, वो तुमने नहीं बनाया, बस इतना ही तो अंतर है। आखिरी किसी न किसी मूर्त वस्तु में अमूर्त वस्तु की भावना करना, यही तो हम कर रहे हैं और यही तुम कर रहे हो, फिर हमारी क्यों धज्जी उड़ाते हो मूर्ति पूजकों की? श्रद्धा भाव से तुमको जिसमें प्रतीक मानकर करते हो, क्योंकि हमारे वेदांत परमात्मा को सर्वव्यापक मानता है। सर्वव्यापक मानने के कारण भैंस के गोबर में भी है कि नहीं, गाय के गोबर में भी है कि नहीं? वो तो है ना, इसीलिए तो हमने उसमें गोवर्धन पूजा करना शुरू कर दी। हम गोबर की पूजा नहीं करते, किसकी पूजा करते हैं? गोबरावच्छिन्न चैतन्य की। वेदांत की भाषा बोल दिया वो हमने, ये वेदांत की भाषा है। हम गोबर की पूजा नहीं करते हैं, यदि गोबर की पूजा करके भी हमको फल मिल रहा है, हमारा मनोकामना हमारा मनोरथ पूरा हो रहा है, तो मनोरथ पूरा करने वाला गोबर नहीं है, गोबरावच्छिन्न चैतन्य है। जो शिव सर्वव्यापक है, वही शिव सर्वव्यापक होने के कारण गोबरावच्छिन्न भी है, गोबर में भी है, तो हमको फल देने वाला कौन है बोलो? गोबर की, गोवर्धन की पूजा करके हमारे मनोरथ पूरा करने वाला कौन है? गोबर है कि गोबरावच्छिन्न शिव है? वेदांत की भाषा जो जानता है वो समझेगा इस बात को, क्योंकि चैतन्य सर्वव्यापक होने के कारण जो जो वस्तु हैं उस वस्तु में तद वस्तु अवच्छिन्न होके रहेंगे। हाँ, जैसे आकाश सर्वव्यापक होने पर, आकाश सर्वव्यापक होने पर सीधा आकाश में हम पानी नहीं भर सकते हैं, किसमें भरते हैं? घड़े में नहीं भरते, घड़े में पानी नहीं भरते हम, किसमें भरते हैं? घटाकाश में। पानी किसमें भरते हैं? स्पेस में भरते हैं कि घड़े में भरते हैं? घड़ा कोई स्पेस नहीं है, घड़ा कोई स्पेस है? घट तो घट है, स्पेस अलग है, घट अलग है, घटाकाश अलग है, घड़ अलग है, पानी कहां भरते हैं? घटाकाश में। लेकिन सब लोग कहते हैं घड़े में भरते, घड़े में भरते, घड़े में तो घड़ा है, घड़े में कहीं अवकाश है पानी के लिए? हैं? घड़े में तो घड़ा ही है, पानी के लिए अवकाश तो है ही नहीं। पानी के लिए अवकाश तो घड़ाकाश में है, चलिए पानी भरते कहां? अब देखो, आकाश सर्वव्यापक होने के कारण घड़े के अंदर भी है कि नहीं? तो पानी हमने कहां भरा? घटाकाश में। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण गोबर में भी है कि नहीं है? सर्वव्यापक होने के कारण गोबर में भी है। अब वही शिव सर्वव्यापक है तो गोबर में भी है, तो गोबरावच्छिन्न चैतन्य की हम पूजा कर रहे हैं, गोबर की नहीं। और हमारे मनोरथ पूरा करने वाला गोबर नहीं, क्या है? गोबरावच्छिन्न चैतन्य, वही शिव है। ये बुद्धि होना अलग चीज है, और गोबर में गोबर बुद्धि होना अलग चीज है, गोबर में सर्वव्यापक परमात्मा बुद्धि होना अलग चीज है। तो लोग कहते हैं हमने गोबर लाके गोवर्धन की पूजा की तो हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया, तो दूसरे ने सुन लिया तो कई सड़क में से गोबर भैंस का उठा लिया, घर में रख लिया और उसको पूजा करने शुरू कर दिया। ये क्या है बोलो? उसकी वो सर्वव्यापक चैतन्यता की बुद्धि नहीं हो रही है, है? उसकी तो सर्वव्यापकता की बुद्धि हो गई, तब उसे गोबर में भी उसी भगवान बुद्धि करके पूजा कर रहा है, और उसमें सर्वव्यापकता की बुद्धि तो है ही नहीं। उसने क्या देखा? इसने गोबर की पूजा करके इसका मनोरथ हो गया पूरा, तो हम भी गोबर की पूजा करते हैं, तो बोले गोबर लाया और गोबर का एक टीला बना लिया और पूजा करने शुरू कर दिया। तो कहता है हमारे मनोरथ पूरा नहीं हुआ। पहले का संवादी भ्रम है, दूसरे का विसंवादी भ्रम है। ये देखो ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने आज पहले ही भ्रम के भेद की व्याख्या करना शुरू किया।
यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति काचास्मनि मणि जले पेष्टे क्षीरम भवति मृगतृष्णा सुसलिलम।
बुद्धि भवति, बुद्धि का अन्वय करते जाना।
तथा देव भ्रांत्या,
हे देव हे शिव, इसी तरह कुछ जड़मति जड़धि भ्रांति से क्या करते हैं, भवत अन्यम भ्रांत्या भजति, आपको छोड़कर आपके सर्वव्यापकता को न जानने वाले, आपकी सेवा करना छोड़कर अन्य अन्यों की सेवा करने चले करते रहते हैं। आपकी सर्वव्यापकता को न जानने वाले भ्रांति से अन्य अन्य की पूजा करने लग जाते हैं।
और हमारे महाराज जी ने कहा, अरे भाई राम की पूजा छोड़कर हनुमान की पूजा करने शुरू कर दिया, राम बड़े हैं कि हनुमान बड़े हैं? बोलो, राम मालिक हैं और वो राम मालिक की तो पूजा नहीं करते हैं, क्या करने लग गए? हनुमान जो राम के सेवक हैं उनकी पूजा करने लग गए। ले जी क्यों महाराज? बोले हनुमान जी के बारे में सुना है, बाल समय रज भक्त छिलिनो तब तीन हूं लोक भयो अधियारो, काई सुत्रास ताई सुत्रास भयो जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जय जग में कभी संकट हुए। जितना भी जो भी संकट आएगा भगवान माने हनुमान जी सारे संकट को दूर करने वाले हैं, संकट मोचन हनुमान की जय। देव जी तो देखो हनुमान जी शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र है, शिव है। शिव के जो 11 स्वरूप है ना, रुद्र के जो 11 स्वरूप है उनमें से हनुमान जी 11वें अवतार है शिव के। लेकिन क्या करते हैं, शिव की पूजा न करके हनुमान जी की पूजा चलेगा, क्योंकि हनुमान जी सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। किसी ने कह दिया हनुमान जी का 40 पाठ करते हुए भी कुछ ठीक नहीं हुआ, रोग बढ़ता गया, तो वे क्या करे? बोले ओ तब फिर महामृत्युंजय का जप करो। और किसी ने महामृत्युंजय का जप किया, जप करने पर भी रोग ठीक नहीं, क्या करे? बोले हनुमान 40 का पाठ करो। ले एक शुरू किया उसको छोड़ा, फिर दूसरा किया उसको छोड़ा, फिर तीसरा किया उसको छोड़ दिया, फिर चौथा किया। ये क्या है बोलो? भ्रांति। सभी एक ही परमात्मा का स्वरूप है, हनुमान चाहे हो चाहे शिव हो, सब एक ही परमात्मा का स्वरूप होने के कारण वही सर्वरूप है। ये बुद्धि करके एक ही के आश्रय में न रहकर व्यक्ति भ्रांति से अनेक का आश्रय ले लेते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे भ्रांत व्यक्ति है संसार में, सारे प्रयोजन पूरा करने में समर्थ भगवान शिव होते हुए भी शिव के ही अनन्य शरण, आपके अनन्य शरण को न करके उसके भी जाएंगे, उसके यहां भी जाएंगे। इससे वो बढ़िया है, उससे वो बढ़िया है। संसार इतनी भ्रांत है कि भटक रहा है, परमात्मा के बारे में ही भ्रांत है, निश्चय नहीं कर पा रहा है ना? निश्चय नहीं कर पा रहा है, भ्रांत है। तो एक दृष्टांत देते हैं ना महात्मा, किसी एक गांव में एक किसान था, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ कि खेती करने के लिए उसको बहुत कठिन हो गया, बारिश नहीं हुई तो महात्मा आए, क्या हुआ बेटा? बोले कि महाराज क्या करें, देखिए बारिश नहीं हो रही है, पानी हो तो खेती करें, मेरे इतना जमीन है अब पानी नहीं है, मैं क्या करूं महाराज?
महात्मा ने विचार किया, अरे बेटा जिस जमीन में तुम खेती करना चाहते हो उस जमीन के नीचे अपार जल है, जल का स्रोत है। तुम एक काम करो, उसमें एक गहरा कुआं खोद लो तो पानी पानी है, फिर उसको लिफ्ट करके खेती कर लो, बारिश नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। महाराज कितनी गहराई खोदना पड़ेगा? महात्मा ने कहा कि लगभग 60 फुट खोदना पड़ेगा। 60 फुट यदि तुम खोदोगे तो पानी मिल जाएगा, फिर नीचे पानी नीचे ऊपर तांग खींच लो, उसके बाद खेती कर लो, बारिश न हो तो भी तुम खेती कर सकते हो। तो वो महात्मा तो चले गए। अब वो कुआं खोदने शुरू किए, खोदता गया 10 फुट खोदा, महात्मा ने 60 फुट खोदने के लिए कहा था। उसके नीचे खोदना थोड़ा उसको कठिनाई आई। महात्मा ने 60 फुट खोदने के लिए कहा था, 10 ये हो गया, बगल में फिर दूसरी जगह 10 खोदने शुरू कर दिया। कितना फुट हो गया? 10 प्लस 10 10 प्लस 10 20 हो गया ना। अब 20 तो हो गया, अब कितना रहा? 40 रहा ना। फिर 10 दूसरा खोद लिया उसने, हिसाब लगाया उसने, 30 हो गया, हाँ आधा हो गया। अब फिर क्योंकि गहराई में जाना उसको कठिन नहीं पड़ रहा था, और 60 फुट खोदो तो पानी आ जाएगा, महात्मा ने कहा 60 फुट खोदना है, तो 30 फुट खोद चुका वो। फिर उसने 10 फुट तीसरा खोद लिया, चौथा खोज लिया, 40 हो गया। ऐसे ही 6-10 फुट के 6 गड्ढे खोद ली, 60 फुट पूरा हुआ कि नहीं, है हो गया कि नहीं? अब पानी उसके मिलेगा कि नहीं, है पानी मिलेगा कि नहीं बोलो? नहीं मिलेगा। तो क्या वो गलती कर रहा है? वो गलती कर रहा है और हम सही कह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। 10 मिनट शिवजी की पूजा किया, महात्मा ने कहा 1 घंटा भगवान की सेवा करो। महात्मा ने क्या कहा? रोज 1 घंटा भगवान की सेवा करो। तो 10 मिनट शिवजी की सेवा की, और 10 मिनट कृष्ण की सेवा की, और 10 मिनट राम की सेवा की, 10 मिनट हनुमान की सेवा की, 10 मिनट देवी की सेवा की, 10 मिनट पता नहीं किस किस की सेवा करते हो, करते हैं कि नहीं? तो 1 घंटा पूरा होता है कि नहीं हमारा, बोलो। महात्मा ने कहा 1 घंटा पाठ स्तोत्र पाठ किया करो शिव जी का, 1 घंटा पाठ किया करो स्तोत्र पाठ। तो उसमें से 1 स्तोत्र 5 मिनट का देवी का कर लिया, और दूसरा 5 मिनट का गणेश का कर लिया, फिर 5 मिनट का किस किस का करते हो बोलो? जितने भी नाम प्रसिद्ध हैं सभी का करते हैं कि नहीं? तो परिणाम वो किसान सही है कि हम सही है बोलो? है जो किसान की हालत है वही हमारी हालत है। ये कहीं भगवान में पूरी निष्ठा करके उसी का ही लगातार निरंतर अनन्य भाव से 1 घंटा एक ही देवक देवी का परमात्मा का अनन्य भाव से पूजा करोगे, किसी और की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, ये बुद्धि तो है नहीं। स्तोत्रों में जो फलश्रुति सुन लेते हैं क्या है ये, अनेक स्तोत्र के पाठ करने की रुचि हमारी क्यों बढ़ती है, क्यों हो रही है ये स्थिति था मालूम है? स्तोत्रों में जो अंत में फलश्रुति सुनते हैं ना, बस वो फलश्रुति को सुनने के बाद हम निश्चय कर देते हैं, अरे इससे तो ये ठीक है, इससे भी ये ठीक है, इससे ये ठीक है, इससे वो ठीक है। ले जी मैम ने स्तोत्र पाठ करते करते फिर अचानक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं बोलो? अब भाई मैम ने स्तोत्र का कह दिया पुष्पदंताचार्य जी ने, महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वम्। लेव जी इतना सुंदर फल स्तुति बता दिया, तो स्तोत्र पाठ कर दिया तो हो गया सब कुछ, तब फिर उसके बाद शिवतांडव पाठ करने शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? शिवतांडव में भी फलश्रुति आ गया। फलश्रुति क्या है? पूजा अवसान समय दस वक्त्र नित्रम या शंभु पूजन परम पटती प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखिम ददा प्रददाति शंभो। जो ये शिव तांडव कृता तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि लक्ष्मी हमेशा आगे खड़ी हो जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? ये फलश्रुति सुनता है तो फिर वो महेशान्ना परम तत्व वो छोड़ देता है, फिर जटाटवी गलत ज्वल करने लग जाता है। क्योंकि इसमें फलश्रुति क्या आ गया? लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभो। ले जी, फिर ये कर लेता है। और फिर उसके बाद लिंगाष्टकम पाठ करता है, हैं? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। फिर वो जन्मज दुख, शरीर संबंधी सारे दुखों को नाश करने वाले भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा का प्रणाम करते ही लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठित शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये फलश्रुति सुनता है तब तक क्या बढ़िया स्तोत्र है, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए महाराज। फिर उसको भी पढ़ता है तो सारे सारे तो दुनिया भर के इतना होता है सुबह स्तोत्र। और क्योंकि एक में विश्वास नहीं करता, जबकि सब एक ही है, जो भी पाठ करो एक ही है, एक ही परमात्मा है, ये बुद्धि तो होती नहीं, तब फिर अलग अलग स्तोत्र के पाठ करता है। शंकराचार्य जी बड़े सुंदर कह रहे हैं, यथा बुद्धि सुक्तौ रजतमिति काचास्मनि मणि जले पेष्टे क्षीरम भवति मृग तृष्णा सुसलिलम तथा देव भ्रांत्या भजति भवत अन्यम जड़मतो महादेवे सत्सम त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते। लेकिन वह ये मानता नहीं कि एक ही आपके आश्रय में रहकर महादेव ही सब कुछ हैं, ये निश्चय न कर पाने के कारण भ्रांति से भटकते रहते हैं, हजार देवताओं का कल्पना करते हैं और हजार देवताओं की उपासना करते हैं, हजार देवताओं की स्तुति करते हैं, हजार देवताओं की सेवा करते हैं, इस तरह भटक जाते हैं कि 60 फुट एक ही जगह खोदने के लिए महात्मा कहे थे, हैं? महात्मा ने क्या कहा था? महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो। महात्मा का आशय क्या था? एक ही जगह 60 फुट खोदो, ये कहने का अभिप्राय था। महात्मा ने कह दिया 60 फुट खोदो, 60 फुट खोद लिया, पानी नहीं मिल रहा है। ले जी, तो प्रयोजन क्या हो रहा है? हम कर तो रहे फिर भी, बहुत कुछ कर लेने पर भी कुछ फल सामने नहीं आता, करते हुए भी हम हमेशा असंतुष्ट का असंतुष्ट ही रहते हैं कि नहीं? करते हुए भी असंतुष्ट के असंतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं करने में हमारी त्रुटि है, भ्रांति है, कहीं ना कहीं हमारी भ्रांति है। भ्रांति क्या है? इसको भी करो, इसको भी करो। अरे भाई, एक ही पर करो, निष्ठा की बात होती है, ये निष्ठा पर कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, गभीरे का सारे विसति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मति ही समर्पेकं चेतस सरसिजमुमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम जनई है न जानाति किम हो। आहा, हे महाराज, ये संसारी लोग
सुनते तो है कि भगवान की पूजा करो तो सब प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो किस विधि से पूजा करें? तो किसी ने कहा भगवान शिव कमल के फूल बड़े प्रसन्न हैं, कमल फूल से शिव जी की पूजा करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने भी जब भगवान शिव की पूजा करना शुरू किया तो श्रावण के सोमवार के दिन विष्णु ने संकल्प किया कि भगवान शिव को मैं 1000 कमल फूल से पूजा करूंगा। संकल्प कर ली और 1000 कमल का फूल टोकरी में रखा और संकल्प करके आचमन प्राणायाम आदि सब करके पूजा आरंभ की और शिव सहस्र नाम ले ली हाथ में। ओम शिवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम भवाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम मृडाय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, ओम हराय नमः कमल पुष्पम समर्पयामि। करते 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 पाठ करते गए, कमल पुष्प चढ़ाते गए। भगवान शिव ने कहा इसकी मेरी कितनी निष्ठा है जरा देखें तो सही है, मेरी पूजा में इसकी निष्ठा कैसी है जरा देखें तो सही। भगवान शिव ने उसके टोकरी में से एक कमल का फूल, मैम ने स्तोत्र पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने, हटा दिया, गायब कर दी। अब भगवान शिव मन विष्णु 1000 नाम पढ़ते हुए चढ़ा रहे थे हैं, अंतिम नाम 999 नाम का उन्होंने पाठ कर ली और कमल का फूल चढ़ाया। एक नाम बचा है नामावली में और इधर टोकरी देखते हैं तो खाली, एक फूल मिला ही नहीं। और देखो अंग भंग होता है तो अंगी विकल हो जाता है। तुमने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 कमल पुष्प चढ़ाकर अर्चना करूं, यदि 1000 न चढ़ाकर 999 चढ़ा ली तो 1000 चढ़ाने का फल मिलेगा नहीं, 999 चढ़ाने का फल बेकार हो जाएगा। प्रतिज्ञा संकल्प तुमने जो की कितनी का, मैं केवल कमल पुष्प चढ़ाकर सेवा करूंगा, इतना कहते तो जितना मिला उतनी से तुमको काम चल जाता। लेकिन तुमने 1000 संख्या निश्चित करके प्रतिज्ञा कर ली तो 1000 ही चढ़ाना पड़ेगा, 999 जो फूल चढ़ाओगे उसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध, बेकार हो जाएगा, अंग भंग हो गया तो अंगी भंग। अब भगवान विष्णु को बड़ा मुश्किल पड़ गया, प्रतिज्ञा तो कर चुके हैं 1000 चढ़ाऊंगा, अब क्या उनके प्रतिज्ञा भगवान शिव नहीं जानते थे कि 1000 चढ़ाऊंगा? कल जाकर यदि भगवान शिव ने कहा तूने तो 1000 चढ़ाऊंगा प्रतिज्ञा की थी, 999 क्यों चढ़ाया, ये क्यों नहीं चढ़ाया, इसलिए हम फल नहीं देंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, कह दिया तो हम क्या करेंगे? तो प्रतिज्ञा हानि किया तूने, तेरी प्रतिज्ञा हानि हुई। तो भगवान शिव बहुत विष्णु बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐसा भी नहीं है कि संकल्प किया जिस आसन में वो फिर उठे गए और कमल फिर दूसरा लेके आए तब फिर वो संकल्प टूट गया, अधूरा हो गया, आसन भंग हो गया, आसन भंग हो गया तो खत्म। हम लोग इस बात का ध्यान तो देते नहीं है, करते सब हुए लेकिन विधि से नहीं करते हैं। जब करने बैठते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ए रामो दूध आया कि नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय है। अब क्या देखो तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, 108 बार मैं जप करूंगा, 108 बार हुई, तुमने बीच में ये रामू कह दिया तो खंडित हो गया। अब यह एक रामू कहने के बाद फिर तुमने शुरू से शुरू करते माला और एक रामू न के बिना पूरा करते तो एक माला पूरा हो जाता, फिर दोबारे फिर शुरू करते करते फिर बीच में आ गया, अरे बेटा उठा के नहीं रामू, तो देखा तो नहीं चाय बनाना था उसको, आज स्कूल जाना है जरा उठा दे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्या हुआ भाई, प्रतिज्ञा हानि। तो सब कुछ करते हुए संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विधि में त्रुटि है, इसी तरह त्रुटि हो जाता है तब रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो तुम कहते हो हमने सब किया फल नहीं आ रहा है, यहां यही कह रहे।
तो भगवान विष्णु ने क्या किया पता है? उठ के जाता हूं तो पूजा खंडित हो जाता है। अब प्रतिज्ञा की 1000 कमल चढ़ाना है, एक फूल की कमी हो गई, क्या करूं? उनको झट स्मृति आ गई, सभी भक्त लोग मुझे हमेशा क्या कहते हैं, कमल नयनम, सब लोग मुझे बार बार कमल नयन कमल नयन कमल नयन कहते हैं। इसका मतलब मेरा नेत्र कमल है, नेत्र कमल है तो फिर भगवान को कमल की प्रसन्नता है, कमल चाहिए। दो है, एक से मैं देख लूंगा, एक शिव जी को चढ़ाऊंगा। फाट उन्होंने वो अपने नेत्र निकाला और चढ़ा दी। बस किसने? वैष्णवो सुन लो, किसने? विष्णु ने। हैं, तुम तो नाम भी लेने नहीं चाहते हो शिवा, टाका मारो कहे? कपड़ा सिवानु छे नहीं कहेंगे, कपड़ा टाका मारवानु छे। टाका क्यों मारना है? शिव क्यों नहीं सियोगे? क्योंकि शिव आ गया ना उसमें। अरे रे 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 ले जी, ये कुछ दुराग्रही है, आप लोग नहीं है? हैं, ऐसे भी है भाई। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सच्ची घटना है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। प्रेम कुटीर में आप लोग भी जानते हो, मैं प्रवचन कर रहा था, बहुत पहले की बात है, और प्रेम कुटीर के दयाराम मेवा वाला तो आप जानते हो ना, बहुत लोग जानते हो, दयाराम मेवा वाला बूढ़े काका थे, सब लोग काका कहते हैं, दयाराम काका मेवा वाले, और उनकी आदत भी आप लोग जानते हो, शिवोहम शिवोहम, जहां भी चलते थे, सड़क में भी चले तो जोर जोर से शिवोहम, और कहीं भी शिवोहम जोर जोर से करते हुए चलते थे। एक दिन की बात है, कुछ कृष्ण भक्त साधु, कृष्ण भक्त साधु, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए ना, कृष्ण भक्त साधु, वो मेरे पास आए थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे, मैं भी उन भी, तो बैठे थे, हाथ में माला भी जप रहे थे, अब बात भी कर रहे थे हमसे, हैं? उनके हाथ में माला भी घूमती रहती है ना आज से, तो बात भी कर रहे थे। इतनी में वो आ गए दयाराम मेवा वाले, शिवो हम करते हुए मेरे कमरे में घुस गए जोर जोर से। तो जहां उन्होंने जोर जोर से शिवो हम कहने लग गए, ये जो कृष्ण भक्त साधु उन भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण, जोर सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्ची घटना। ओहो, उनका शिवोहम ताकि हरे कृष्ण से गायब हो जाए, दब जाए, वो सुनना ही नहीं चाहे। तब फिर दयाराम काका ने मुझे प्रणाम किया, उसके बाद फिर उन साधुओं को प्रणाम करने के लिए झुके तो उनको मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हमका हमारा चरण ने मत छू। बोले क्यों महाराज, आप तो साधु है। बोले नहीं नहीं आप तो शिव हो, हम तो जीव हैं, हम तो परमात्मा के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, आप तो शिव हो क्योंकि आपने शिवो हम कहा, अब शिव हमारे चरण छुए? ना ना ना, छूने नहीं दिया। अब ये क्या है बोलो, ये क्या है, पूर्वाग्रह है कि नहीं, दुराग्रह है कि नहीं है? उनको कह देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं महाराज हम अपना चरण क्यों छुआएंगे, आप चरण मत छुओ, आप भजन करो, हम भी भजन करते हैं, चरण छुने की क्या जरूरत, दूर से हाथ जोड़ लो, कह देते तो खत्म हो जाता। वो उन्होंने व्यंग किया, व्यंग उक्ति उनकी, आप शिव है साक्षात शिव है तो हमारा चरण क्यों छुएंगे आप शिव। ले जी ठीक है, वो साक्षात शिव है तो तुम छू लो, है वो साक्षात शिव है तो तुम उठ के छू लो, तुम क्यों नहीं छू रहे हो, कह तो दिया कि आप शिव है। इसका मतलब क्या है, क्या सही भावना से सही हृदय से ये बात अभिव्यक्ति हो रही है? दुराग्रह है, भगवान विष्णु ने तो आंख निकाली और चढ़ा दी, तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह, तुम्हारी भक्ति, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो बोलो। बोले नहीं महाराज, आप इसी तरह प्रसन्न रहें, हमको इतनी और कुछ नहीं चाहिए। तब फिर वो आंख भगवान ने वापस कर दी, उनका आंख जैसा का वैसा हो गया, साथ में सुदर्शन चक्र दिए। विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शिव के दी हुई है, ध्यान रखना। हाँ? ये कैसे चक्रपाणी हो गए आज विष्णु, किसके कृपा से? शिव कृपा से। कैसे? उन्होंने अनन्य भाव से भक्ति की और अपना नेत्र ही उनको सर्वस्व मानकर नेत्र कमल चढ़ा दिया, उनको कोष नुकसान नहीं हुआ, ये निष्ठा की बात है। लेकिन कुछ लोग ये देखते हैं भगवान शिव को कमल प्रिय है तो कमल से अर्चना करने के लिए गहरे से गहरे सरोवर में कमल के फूल लेने के लिए आपने जीवन की भी बाजी लगाकर उस सरोवर में घुसते हैं और कमल तोड़कर लाते हैं तब आपकी पूजा करते हैं। एक ये गभीरे का सारे बिसती, और दूसरा बिजने घोर बिपिने। कुछ लोग भगवान शिव को जंगल के कुछ फूल ऐसे बहुत प्रिय है, जैसे पहले भगवान शिव को केतकी का फूल, केवड़ा का फूल अति प्रिय था, अति प्रिय। और वो केवड़ा घोर जंगल में होता है और कांटे कांटों के बीच में होता है केवड़ा। लेकिन जिस दिन से केवड़ा ने भगवान शिव से झूठ बोला, ब्रह्मा के पक्ष में लगकर भगवान शिव से झूठ बोला, तो भगवान शिव ने उसका तिरस्कार कर दिया। तब केवड़ा रोने लगा, महाराज आप हमेशा मुझसे प्रिय करते थे, अब आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। महाराज ऐसा मत करो, दया करो, कृपा करो। तो भगवान शिव ने कह दिया ठीक है, साल में एक दिन मैं तुमको स्वीकार करूंगा, और कोई व्यक्ति यदि उस दिन तुम्हारे फूल से, तुमसे यदि मेरी अर्चना करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होगा। केवड़ा तीज, उस दिन से उसका नाम ही अमर हो गया केवड़ा तीज, और उस दिन भगवान शिव को केवड़ा अति प्रिय है। उसके लिए वो केवड़ा खोजने के लिए घोर जंगल में जीवन को बाजी, कहां बाघ भालू शेर चीता रहते हैं, वहां पर भी व्यक्ति जाता है और केवड़ा को फूल तोड़कर लाता है और भगवान शिव को चढ़ाता है। विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थम जड़मति। एक कमल तो होता है सरोवर में खिलने वाला, एक कमल होता है हिमालय में होता है जहां बर्फ है, वहीं वो फूल खिलता है, उसका नाम है नील कमल। आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, विशेष करके भगवान शिव को केदारनाथ में, उससे भी ऊपर जहां बर्फ बर्फ है वहां से नील कमल लाकर भगवान शिव को पूजा करते हैं। वहां के पुजारी आप लोगों को प्रसाद के रूप में नील कमल का फूल देते हैं, और वो शिव को नील कमल प्रसन्न है करके कठोर से कठोर, जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां बर्फ ही बर्फ है, ऐसे जगह भी व्यक्ति जाकर नील कमल को तोड़ के लाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये सब मूर्ख हैं। ले जी शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब मूर्ख हैं। नील कमल के लिए अपने जीवन की बाजी लगा रहा है, कमल के फूल के लिए गहरे से गहरे सरोवर में जा रहे हैं, केवड़ा के लिए घोर से घोर जंगल में जा रहे हैं, ये नहीं जानते भगवान को सबसे, इन सबसे भी ज्यादा प्रिय फूल उसका हृदय है, और अपना हृदय तो अर्पण करते नहीं है, और खाली कमल का फूल के लिए गहरे सरोवर में डूबने जाएंगे, नील कमल के लिए पहाड़ के चोटी में जाएंगे, केवड़ा फूल के लिए जंगल को घोर जंगल में भटकेंगे, लेकिन ये सब मूर्ख है। मैंने तो इतनी समझ लिया महाराज, ना मैं नीलकमल लाने वाला हूं, ना सरोवर के कमल लाऊंगा, ना केवड़ा ले आऊंगा। आपको इन सबसे भी ज्यादा प्रिय जो सबसे बढ़िया फूल तो क्या है, समर्पेकम चेतस सरसिजा, ये तो चेतस सरसिजा हृदय कमल। हृदय रूपी कमल को कोई अर्पण नहीं करता। और मैं जानता हूं उमानाथ, ये संबोधन है, हे उमानाथ आपको सबसे ज्यादा प्रिय तो हृदय कमल है, और मैं उसी हृदय कमल को आपके चरण में समर्पण करता हूं। बाकी सरोवर में पहाड़ों में जाने की हिम्मत मेरी नहीं है। बस समर्पेकम चेतस सरसिज उमानाथ भवते सुखे नावस्था तुम। बस आपने ही अपने पास है, पैदाश से ही अपने पास है, न कहीं पहाड़ की चोटी में जाना। तुम जहां हो वहीं तुम्हारा हृदय है ही है, उस हृदय कमल को वहीं आराम से भगवान शिव के चरण में अर्पण कर दो, तो फिर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और वो करते नहीं जड़मती, इधर उधर भटकते रहते हैं भगवान को खुश करने के लिए। सुखे नावस्था तुम जन इह न जानाति किम हो। ओहो आश्चर्य की बात है, जनह न जानाति, इस बात को संसारी लोग अज्ञानी लोग नहीं जानते। इसीलिए हृदय कमल को तो भगवान के चरण में अर्पण नहीं करते और बार बार से इधर के भौतिक फूलों को खोजते भटकते रहते हैं। सबसे बढ़िया हृदय कमल अर्पण करो और सुखपूर्वक आनंद से रहो। मैं तो यही करूंगा भाई, न पहाड़ में जाऊंगा, न जंगल में जाऊंगा, न सरोवर में जाऊंगा, बस आराम से यही बैठे बैठे यही आपके लिए हृदय कमल अर्पण है बारस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।